यह आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों आशा किरण में 12 लोगों की मौत होने के संदर्भ में नोटिस जारी किया। 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। आकाशवाणी का संगीत समारोह आज से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने दिल्ली के प्रमुख सचिव और पुलिस अधीक्षक को पिछले एक महीने के भीतर दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों आशा किरण में 12 लोगों की मौत होने के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि मीडिया रिपोर्टों में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की भीड़भाड़ का मुद्दा उठाया जा रहा है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने कहा कि कम समय में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना इस संदर्भ में अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग ने कहा कि रैन बसेरों में 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है लेकिन फिलहाल उनमें 1000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इनका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज दूध दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
आज भारत एक फूड सरप्लस देश है, दूध दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फूड ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल कॉटन सुगर टी फ्रेम्ड फिश इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा की मजबूत व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज हैं और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 9 लाख हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई गई है। प्रधानमंत्री ने भूमि के डिजिटीकरण के लिए बड़े अभियान का भी जिक्र किया जहां किसानों को अपनी भूमि के लिए डिजिटल पहचान संख्या दी जाएगी। खेती के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि इन उपायों से केवल देश के किसानों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमांड हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है कि जो भी कदम है इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य व्यवस्था में बदलाव। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने टिकाऊ कृषि की तत्काल आवश्यकता से निपटना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। ग्रेटर नोएडा में सातवीं अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सरकार पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी ने पिछले छह वर्षों में भारत के आतिथ्य उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शेखावत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में पर्यटन के कई अवसर हैं। श्री शेखावत ने कहा कि देश में कृषि और पर्यटन दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो लोगों की इच्छानुसार हर चीज की पूर्ति कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आकाशवाणी का संगीत समारोह आज से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हो गया है। जाने माने संगीतज्ञ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और पंडित जयतीर्थ मेवुंदी आज अपनी मधुर धुनों की प्रस्तुति कर रहे हैं। कल पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित सलिल भट्ट, पंडित साजन मिश्रा और सौरांश मिश्रा अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी समारोह का आयोजन अलग अलग दिवसों पर हैदराबाद, पटना, जम्मू, शिलांग, इम्फाल, कटक, बंगलुरू, भोपाल, चेन्नई और रांची सहित देश के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। लोक सेवा प्रसारक के आदर्शों पर संस्थापित आकाशवाणी ने देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विविध संस्कृतियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक खुले नाले में गिरने से मां और बेटी की मौत पर आम आदमी पार्टी ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग की और उनके सचिवालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हादसा दिल्ली विकास प्राधिकरण की लापरवाही से हुआ है जो उपराज्यपाल सक्सेना के अधीन है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां दिखाई और उपराज्यपाल तथा डीडीए के विरूद्व नारेबाजी की। आपने डीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यह घटना मेन होल के खुला छोड़ देने के कारण हुई है जिसकी जिम्मेदारी उपराज्यपाल और डीडीए को लेनी चाहिए।
हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आज 3 दिन बीतने के बाद भी उन बच्चों की, उस मां को न्याय नहीं मिल पाया जिनकी एलजी साहब की डीडीए की लापरवाही के कारण, मेन होल के खुले होने के कारण उनकी जान चली गई। एलजी साहब अपना विभाग आते चुप्पी साध ली, आपने भी और जिनके लिए आप काम कर रहे हो भाजपा के लोगों ने भी।
दूसरी ओर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि वो इस संवेदनशील घटना पर राजनीति कर रही है जो कि शर्मनाक है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि नालों की सफाई कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी जिसमें वो असमर्थ रही। उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार विभाग के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है।
परसों रात को जब 13 मृत्यु उस आशा किरण होम में हुई है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई भी विभाग, एमसीडी है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विसेज है, पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली नगर निगम है, डीडी है, जिस भी विभाग की कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनके अधिकारियों को सजा दीजिए। लेकिन अगर आप उसमें भी राजनीति ढूंढेंगे तो शर्मनाक है दिल्ली की सरकार। इनका काम था नालों की सफाई कराना, इनका काम था दिल्ली की जनता को सहूलियत देना। दिल्ली ऐसी दिल्ली नहीं है कि लोग पैदल चढ़ेंगे और सड़क पर मर जाएंगे, ऐसी दिल्ली की कल्पना हमने नहीं की थी।
राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में इमारत ढहने से 3 लोगों के निधन पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज प्रशासन से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने राहत और बचाव कार्य में शीघ्रता लाने की भी अपील की ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाए। श्री यादव ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और मृतकों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत आज सम्पन्न हो गई। ये लोक अदालत नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पहल की है। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं जो त्वरित और किफायती होती हैं। आज लोक अदालत के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दीवानी, भू अधिग्रहण और वैवाहिक मामलों का समाधान किया गया। श्री मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों आशा किरण में 12 लोगों की मौत होने के संदर्भ में नोटिस जारी किया। 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केन्द्र है। केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। आकाशवाणी का संगीत समारोह आज से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आज 14वां भारतीय अंगदान दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने आज नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने ब्रेन डेड घोषित होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के अंग दान कर दिए। उन्होंने देश में अंगदान लेने वालों और सफल अंग प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टरों का भी अभिनंदन किया। सुश्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में अंगदान 4 गुना बढ़कर 18,378 पर पहुंच गया है। उन्होंने डॉक्टरों के प्रयासों और अंगदान करने का फैसला करने वाले परिवारों की सराहना की। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशभर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। अंग प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा राज्यों तथा चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने और उत्साह के साथ इसमें भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने लोगों से 9 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि यह देशभर के लोगों में बुनियादी एकता को जागृत कर रहा है। श्री शाह ने लोगों से तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेने और उसे हर घर तिरंगा वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने की भी अपील की है। राजधानी में वृक्षारोपण अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधों का वितरण किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज कालकाजी और ईस्ट ऑफ कैलाश क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हाथ बढ़ाया और पौधारोपण के जरिए भविष्य को संवारने का संकल्प लिया। श्रीमती आतिशी ने लोगों से इस पहल में शामिल होने की अपील की और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाने के लिए कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में पौधे वितरित किए। राजधानी में आज दिनभर मौसम साफ रहा, वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी देखी गई। आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों आशा किरण में 12 लोगों की मौत होने के संदर्भ में नोटिस जारी किया। 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। आकाशवाणी का संगीत समारोह आज से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।